Boarding in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. तो आज हम ये नई आगे की आयात पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आयात नंबर 95 से 98 तक सूरह अनआम। और हमारी रेफरेंस बुक जो है वो मारिफुल कुरान है, मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह की, और उसकी जिल्द नंबर 3। तो पीछे जो है वो काफी सारी बातें हो चुकी पीछे की आयात से मुतअल्लिक। आखिर में जो दुआ हमने पढ़ी थी, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ लिखी थी, अल्लाहुम्मा जअल जुमलता हुमूमिना हम्मन वाहिदन हम्मल आखिरा, ठीक है, कि हमारे गमों का जो जुमला है ना, यानी बना दीजिए हमारे गमों को वाहिद एक गम, ठीक है, वाहिद गम बना दीजिए। वो कौन सा गम हो? हम्मल आखिरा, आखिरत का गम, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात जो कल की क्लास के अंदर तौहीद से मुतालिक भी हुई थी और अकलमंदी से मुतालिक भी हुई थी कि अकलमंदी के लिए तौहीद ये जरूरी है या शर्त है बल्कि, ठीक है, बिल्कुल सिंगल फोकस होना ये अकलमंदी के लिए जरूरी है। अगर कोई सिंगल फोकस नहीं होता है बल्कि डिस्ट्रैक्टेड होता है तो उसकी अकल जो है वो मुंतशिर होती है और वो फिर सही नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही होती है, जब तक कि वो अपने इस इंतशार से तौबा करके एक अल्लाह की तरफ फोकस ना हो जाए, ठीक है। ये दीनी इस्तिलाह में भी ये चीज अप्लाई होती है और इवन दुनियावी मामलात के अंदर भी, कि अगर आप डिफोकस्ड हो, आप किताब पढ़ रहे हैं कोई भी, चाहे फिजिक्स की किताब हो, केमिस्ट्री की किताब हो, मैथ की किताब हो, या किसी लिटरेचर की किताब हो, आप किताब पढ़ रहे हैं लेकिन आपका जहन फोकस नहीं है तो आपको वो किताब भी समझ में नहीं आएगी, उसका मजमून भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फोकस अल्लाह ताला ने इंसान के लिए एक मजबूरी बनाई है, या अल्लाह ताला ने हमारा जहन ऐसा बनाया है कि ये डिफोकस्ड हालत में फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, इसको फोकस होना लाजमी है। जाहिर है शैतान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर हमारी आजमाइश के लिए पैदा किया ना, कि तुम शैतान की बात मानते हो कि तुम रहमान की बात मानते हो। तो अब शैतान जो है वो यही कोशिश करता रहता है, डिफोकस करना, डिस्ट्रैक्ट करना और इंतशार में लगाए रखना, ठीक है। एक साहब जो है वो हमारे भाई, वो हमें पिछले दिनों उन्होंने मैसेज किया कि मुझे फलाने दूसरे भाई ने मैसेज किया कि आप जो है वो इस फतवा वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिसके अंदर फतवे आते हैं, ठीक है। तो वो है तो बिल्कुल सही जगह का व्हाट्सएप ग्रुप, यानी फतवों का व्हाट्सएप ग्रुप, बिल्कुल सही, उलमाए हक के फतवे वहां पर आते हैं। लेकिन उन्होंने जब हमें ये मैसेज किया तो हमने उनको जवाब में लिखा कि क्यों आपको यकसुई क्या आजकल बहुत ज्यादा हो गई है आपकी यकसुई, आपको संभाल ही नहीं जा रही। वो अब हैं दोस्त हैं भाई हैं तो उनसे इस दिन की बात हो जाती है। कहा कि क्या आपको बहुत काट रही है आपकी यकसुई, कि अब जो है ना वो आपको अपनी यकसुई जो है वो खत्म करने की फिक्र पड़ रही है, तो अब आप फतवों का व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, और कोई नहीं मिला आपको काम करने के लिए, यानी यही अब आप करते रहेंगे कि फलाने ने क्या फतवा पूछा, फलाने क्या फतवा पूछा, फलाने के, हालांकि अपना इल्म का सिलसिला चल रहा है, ठीक है, बाकायदा एक इल्म के सिलसिले में जुड़े हुए हैं, तो अब वो फतवे आते रहेंगे, हर वो पढ़ते रहेंगे उन फतवों को, जो उनसे रिलेटेड नहीं भी होगा, उनका क्या काम है, ये मुफ्ती तो है नहीं कि फतवे पढ़ते रहें दूसरों के, ठीक है, अब इनका क्या काम है फतवे पढ़ते रहना, ना बाहिर बड़ा दीन का काम लगता है, बड़ा जो है वो इल्म का काम लगता है, बड़ा फायदे का काम लगता है, लेकिन कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन स्पेशली उस बंदे के लिए जिसका ये फील्ड नहीं है, ठीक है ना, और उसी तरह जिन्होंने उनको फॉरवर्ड किया, अल्लाह करे वो या उनके कोई घर वाले सुन रहे हो उन तक बात पहुंच जाए, क्यों फॉरवर्ड किया भाई आपने, ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, ठीक है, तो ऐसी हरकतें जो है ना वो हमें करनी ही नहीं चाहिए, ना किसी दूसरे के साथ करनी चाहिए, ना अपने साथ करनी चाहिए, इस बात को याद रखना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन से जो है ना इंसान फिर किसी काम का भी नहीं रहता, तो ये हजरत ने दुआ भी फरमाई ना, वो दुआ भी क्या है कि हमारे तमाम गमों को जो है ना वो एक गम बना दीजिए, वो कौन सा गम हो, आखिरत का गम, ठीक है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी तो अभी है कल नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत ही टेम्पररी किस्म की चीज है, बहुत ही जो है वो, यानी एक जैसे एक दिया होता है जो जल रहा होता है, दिया समझते हैं ना, जो छोटा सा फ्लेम होता है वो जल रहा है, बस एक जरा सी हवा के झोंके की देर है वो बुझ जाएगा, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, ठीक है, जबकि आखिरत की जिंदगी जो है ये हमेशा हमेशा रहने वाली जिंदगी है, तो जिसने अपनी दुनिया की जिंदगी को अपना गम बनाया हुआ होता है कि मुझे ये ना मिला, मुझे ऐसा ना मिला, मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, उससे ज्यादा बेवकूफ इंसान और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि उस किस चीज के ऊपर आपने अपने गमों को लगाया हुआ है, जिस चीज का पता ही कुछ नहीं है कि वो कब, आप आखिरत को क्यों नहीं गम बनाते, अल्लाह ताला से कम अज कम हमें दुआ तो मांगनी चाहिए ना, तो एक बेहतरीन दुआ है इस रमजान मुबारक का तोहफा सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, बेहतरीन दुआ अल्लाहुम्मा ज'अल जुमलता हुमूमिना हम्मन वाहिदन हम्मल आर, ठीक है, तो अल्लाह करे तो हमें को मांगने की तौफीक हो अल्लाह ताला से, दिल के साथ मांगे अल्लाह ताला से तो अल्लाह ताला जरूर अता फरमाएंगे, तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा, कि बेशक अल्लाह ताला है फालिक, फालिक कहते हैं फाड़ने वाला, जैसे सूरह फलक के अंदर, ठीक है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्र मा खलक, ठीक है, तो वहां पर भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो फाड़ देने वाला यानी किसी चीज को ब्लास्ट कर देने वाला, फाड़ना के उर्दू अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ब्लास्ट कर देना कहेंगे, तो हब हब जो है ये दाने को कहते हैं, जर्रा या दाना, तो बेशक अल्लाह ताला दाने को फोड़ने वाला है, या गुठली को, गुठली के लिए भी जैसे कि आम की गुठली होती है, या खजूर की के बीज के लिए गुठली का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो अल्लाह ताला ही गुठली को या बीज को या दाने को फाड़ने वाला है, सही है, वन नवा, तो नवा जो है वो गुटली के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अच्छा युखरिजुल हय्या, वो निकालता है जिंदा चीज को, मिनल मय्यिते मुर्दा चीज में से, जिंदा को मुर्दा में से निकालता है, यानी कोई चीज मुर्दा होती है तो उसमें जिंदगी पैदा कर देता है, या उसके अंदर से कोई जिंदा चीज को निकाल देता है, वरना बाहर की चीज जो होती है मुर्दा होती है, अंदर से जो है वो जिंदा चीज निकल आती है, या कोई चीज मुर्दा होती है उसको कन्वर्ट कर देता है जिंदा चीज के अंदर, ठीक है, वह मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य, और वो निकालने वाला है, ठीक है, मुखरिज का जो लफ्ज है ये फेल नहीं है बल्कि ये इसम फाइल है, निकालने वाला, ठीक है, वही वर्ब फॉर्म वही है, अखरज युखरिजु इखराजन फहुवा मुखरिजुन, तो युखरिजु है जो उसका फेले मुबारक हो गया, और मुखरिजु जो है उसका इसम फाइल हो गया, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने अपनी किसी हिकमत की वजह से, जो हमारे मुफस्सिरीन ने यकीनन इसके ऊपर फिर तफसील लिखी होगी, हजरत ने यहाँ पे नहीं मेंशन करी तो हम और हम मजीद तो नहीं देख पाए, तो मुखरिज उल मैयत, निकालने वाला है मैयत को यानी मुर्दा चीज को, हई से, जिंदा चीज से। तो जो जिंदा चीज होती है उसके अंदर से मुर्दा चीज अल्लाह निकालता है, मुर्दा चीज होती है उसमें जिंदा चीज अल्लाह निकालता है। जालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुअफकून। तो जालिकुम अल्लाह, ये है अल्लाह, इसमें इशारा होता है, जालिका हाजा होता है, और इसी तरह जालिका की गर्दान चलती है, हाजा हादाने हाजी हाताने हा उलाई, और जालिका जाने का तिलका ताने का उलाई का। तो जालिका के साथ जो है वो जब कुम लग गया, का की बजाय कुम लगा दिया, तो फिर इससे जो है ना वो जिन लोगों की से बात कर रहे हैं, जिन लोगों से बात कर रहे हैं तो वो मुराद हो। तो इसी वजह से इसकी एक और जो तर्जुमा बनता है जो कि हमारे लिए ज्यादा समझना आसान है, वो इस तरह से कि लोगों, ज़ालिकुम गोया के हम लोगों से अल्लाह ताला खिताब फरमा रहे हैं, ए लोगों अल्लाह वो अल्लाह है, ठीक है, जो कि युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति वो मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य, ये कौन करता है, वो अल्लाह है, ए लोगों वो अल्लाह है। फअन्ना तुफकून, बस तुम किधर बहके चले जा रहे हो, किधर तुम चले भागे चले जा रहे हो, बहके चले जा रहे हो, ठीक है। तो अन्ना तर्जुमा जो है वो कहाँ, उर्दू में हम कहाँ से करेंगे, और तुफकून तुम बहके चले जा रहे हो, तुम यानी यानी सीधे रास्ते के बजाय किसी गलत रास्ते के ऊपर जाना ना, किसी और रास्ते के ऊपर जाना जो सही रास्ता नहीं है, तो उसको फिर बहकना कहते हैं। तो उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आगे फरमाते हैं फालिकुल इस्बाह, सुबह का निकालने वाला, सुबह को भी उसके लिए भी फलक का लफ्ज इस्तेमाल किया यानी फालिक। तो रात की तारीकी को भी फाड़ करके सुबह निकालता है, ठीक है, यानी रात की तारीकी जो है ना वो ऐसे खत्म होती है कि जो या गोया के उसके अंदर से ना रोशनी गोया के नमूदार हो रही है, तो गोया के फटने का जैसा कि एक एक शक्ल होती है, तो वैसी शक्ल बन रही होती है। फालिकुल इस्बाह, फाड़ कर निकालने वाला सुबह की रोशनी का। वो जाला लैला सकनन, और जिसने रात को बनाया, जाला जिसने बनाया, उसने बनाया अल्लैला रात को, सकनन आराम के लिए, सुकून के लिए रात को बनाया। तो रात को फिर आज के साइंसदान भी अपने तहकीक के बाद और अपने ऑब्जर्वेशंस के बाद क्या फरमा रहे हैं ये साइंसदान कि जी रात को जो है ना इंसान की जो बॉडी होती है तो उसके अंदर से कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, मेलाटोनिन भी उसका नाम रख दिया है उन्होंने, मेलाटोनिन एक हॉर्मोन रिलीज होता है, और भी जो है वो दूसरे हॉर्मोन रिलीज होते हैं, तो उससे जो है होते हैं ना वो इंसान की बॉडी को सुकून मिलता है, लेकिन सिर्फ रात की वजह से सुकून नहीं मिलता कि जी रात है तो सुकून मिल रहा है, बल्कि जब उस रात में वो सो जाता है तब उसको सुकून मिलता है, ठीक है। तो अंधेरे अंधेरे के अंदर इंसान को जो है वो नींद आ जाती है, और वहीं पे आप रोशनी कर दें तो अच्छा खासा जो नींद वाला बंदा भी होता है, एक्सेप्शंस के अलावा कुछ लोग होते हैं माशाल्लाह उनको रोशनी में भी नींद आ जाती है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उनको कैफीन पीने के बाद भी नींद आ जाती है, ठीक है, लेकिन उमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता ना, तो फिर उमूम की बात की जाती है, और अल्लाह ताला भी उमूम ही को लेकर के यानी मेजोरिटी को लेकर के बात फरमाते हैं कि भाई अंधेरे में इंसानों को नींद आ जाती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अंधेरा बनाया रात का जिसके अंदर नींद आ जाती है तो सुकून मिल जाता है, और जो नहीं सोता तो फिर उसको सुकून नहीं मिलता, ऊपर से भी सुकून नहीं मिलता, अंदर से भी सुकून नहीं मिलता, और उसके जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। वशमसा वल कमर हुसबान, और शम्स को भी बनाया उसने, जाला ज्यादा जो है वो शम्स के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, कमर के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन इनको कैस किस लिए बनाया? हुस्बान, यानी हिसाब किताब के लिए बनाया। लैल को किस लिए बनाया? सुकून के लिए बनाया, यानी लैल का जो एक सिस्टम बनाया। ये लैल जो है यानी रात जो है, ये कोई ऐसी फिजिकल बॉडी नहीं है, जैसे कि शम्स जो है सूरज, इसकी एक फिजिकल बॉडी है, कमर उसकी एक फिजिकल बॉडी है, एक बाकायदा एक शेप एंड फॉर्म है। लेकिन रात क्या है? ये एक फिनोमिना है, फिनोमिना अंग्रेजी में इसको कहेंगे या उर्दू में इसको एक निजाम कहेंगे। इस रात की कोई कोई वो शक्लो सूरत नहीं है, ठीक है। इसी वजह से जब भी हम वो वाली बात करते हैं ना कि अल अशिया तोरफु बे अजदादिहा, के अशिया जो है वो अपनी जिद से पहचानी जाती है, तो वहां पर कौन सी मिसाल देते हैं? वो सूरज की मिसाल नहीं देते कि सूरज जो है वो अपनी जिद से समझ में आता है, और चांद जो है वो अपनी जिद से समझ में आता है, और जमीन जो है वो अपनी जिद से समझ में आती है। नहीं, उनकी तो बाकायदा फिजिकल बॉडीज है ना, तो उनको तो आप दिखा भी सकते हैं किसी बंदे को ले जाकर के, हाँ भाई वो ऊपर देखो वो सूरज है, देखो सूरज ऐसा होता है, ठीक है, ये देखो तुम ये चांद है, चांद ऐसा होता है, या उसकी तस्वीर खींच करके आप किसी को दिखा सकते हैं। लेकिन जो फिनोमिना होते हैं, जो निजाम होते हैं, ठीक है, जो एक सिस्टम होता है ना, तो वो सिस्टम और निजाम, ये सारी चीजें जो होती है ना, इनकी फिजिकल फॉर्म नहीं होती, शेप नहीं होता, ठीक है, तो उनको समझाना मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो उनको समझाने के लिए जो है ना, फिर आपको किसी जिद का सहारा लेना पड़ता है कि भाई इसकी जिद ये है, तो बस समझ लो कि ये है, ठीक है। तो दिन और रात का कोई आके ऐसा ही मामला है, क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म्स नहीं है। तो शम्स और कमर जो है ना, उनको बनाया हमने हिसाब किताब के लिए, यानी इससे जो है वो फिर हमें दिनों का हिसाब होता है, घंटों का हिसाब होता है, हमारे मौसमों का हिसाब होता है, ठीक है। तो इनको आप पढ़ते चले जाएं, गौर करते चले जाएं, आपको सूरज और चांद के जरिए से जो कायनात के अंदर चीजें होती हैं, तो उनका पता चलता चला जाएगा। अल्लाह ताला ने एक लफ्ज में पूरा का पूरा मामला समेट दिया कि जी हमने जो है ना हिसाब किताब के लिए इसको बनाया, ठीक है। अच्छा, जालिका तकदीरुल अजीजुल अलीम, ये अंदाजा रखा हुआ है जोर आवर खबरदार का, यानी ये जो अल्लाह ताला ने ये चीजें बनाई है ना, तो इनसे अल्लाह ताला ने गोया के तकदीर, जालिका तो हो गया ना, वही इसमें इशारा हो गया ये। तो तकदीर क्या है? अल्लाह ताला ने एक मुकद्दर किया हुआ है, एक कदर बनाई हुई है। कदर मतलब कैलकुलेटेड, जिसको आप कैलकुलेटेड भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसको आप जो है वो एक प्लान्ड भी कह सकते हैं। तो ये प्लानिंग है किसकी? अल अजीज की और अल अलीम की। ये कौन है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफाती नाम। अजीज कहते हैं जिसका जोर चलता है, जबरदस्त भी जिसको कहते हैं, जिसका अपर हैंड होता है, उसको अल अजीज कहते हैं। और अलीम के जिस जो के सबसे ज्यादा इल्म वाला होता है, अल अलीम। वैसे तो अलीम जो है वो ज्यादा इल्म वालों को कहते हैं, लेकिन जब अलिफ लाम लग गया इसके साथ, मारिफा हो गया ये, तो फिर सबसे ज्यादा इल्म वाला, ठीक है ना। वरना तो वो भी है ना कि वकुल्ला फौके अलीम, वहां पर भी अलीम का लफ्ज आया, लेकिन वहां पर अलिफ लाम के साथ नहीं आया, कि भाई हर इल्म वाले के ऊपर एक ज्यादा इल्म वाला होता है, ठीक है ना। लेकिन अल अलीम वो सबसे ज्यादा इल्म वाला होता है, जो कि सबके ऊपर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला, तो वो अल अलीम है। अच्छा, तो ये ना अल अलीम और अल अजीज की ये सारी की सारी मंसूबा बंदी है, प्लानिंग है, ये उसका रखा हुआ अंदाजा है। अंदाजा से वो उर्दू वाला अंदाजा नहीं कि एस्टिमेशन है और गेस वर्क है, नहीं, वो वाला अंदाजा नहीं, बल्कि एक कैलकुलेशन है सारी की सारी। अच्छा, जो कि प्री डिटरमाइंड अल्लाह ताला ने पहले से बनाई हुई कि इससे ये काम लेना है, इससे ये काम लेना है, और इससे ये काम इस वक्त में लेना है, और इससे वो काम उस वक्त में लेना है, ठीक है। तो इसी वजह से तकदीर जो है सिर्फ ये नहीं है कि सूरज का काम जो है वो गर्मी पहुंचाना है, और सूरज का काम जो है वो एक सर्टन तरीके से रोटेशन करनी है, तो अब ये रोटेशन करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, गर्मी पहुंचाता रहेगा, पहुंचाता रहेगा, पहुंचाता रहेगा, हाँ भाई ये तकदीर हो गई सूरज की, नहीं, बल्कि सूरज की तकदीर ये भी है कि इसने ये वाला काम कब तक करना है और कब करना खत्म कर देना है, उसके बाद उसने ये काम नहीं करना, ये भी सूरज के लिए तकदीर हुई। ठीक है, तो सूरज के स्टेट के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं ना, ये भी तकदीर है सूरज की। तो अब सूरज के अंदर ये साइंसदान जो है वो अपनी कैलकुलेशंस के जरिए से बताते हैं कि भाई उसके अंदर जो है ना वो नाइट्रोजन बर्न हो रही है और फलानी गैस बर्न हो रही है, तो वो फ्यूल है सूरज का। अब ये फ्यूल जो है जब बर्न होकर के हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है अपने फ्यूल को, तो फिर वो फ्यूल कम भी तो हो रहा है ना, तो वो फ्यूल कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सूरज की जो स्टेट है वो घट रही है, घट रही है, घट रही है, हत्ता कि ये फ्यूल बर्न होते 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 बिलाकर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर ये सूरज जो है वो वैसा सूरज नहीं रहेगा जैसा कि अभी है। ठीक है, तो तकदीर में ये सारी तफसील भी शामिल है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की तकदीर है, अल अजीज और अल अलीम की। वह वल्लदी, और वो अल्लदी, वो है जो, जाला, जिसने किया, लकुम, तुम्हारे लिए, अन्नुजूम, सितारों को, लितहतदू बिहा फी गुलुमातिल बर्री वल बहर, ली, ताके, तहतदू, तुम रास्ता मालूम करो, यानी फिजिकल रास्ता मालूम करो, ये नहीं कि तुम सूरज के जरिए से जो है वो सॉरी सितारों को देख करके नमाज पढ़ने का तरीका सीखो। ठीक है कि भाई, या सूरज को देख करके तुम तौफीक हासिल करो, यहाँ पे हिदायत से मुराद तौफीक नहीं है। ठीक है, तौफीक होती है ना कि भाई कुफर से तौबा करके मुसलमान हो गया तो तौफीक मिल गई। ठीक है, और जो है वो मुसलमान होने के बाद जो है वो नेक मुसलमान बन गया, तौफीक मिल गई, हिदायत मिल गई। तो अब तुम सितारों से जो है ना तुम तौफीक हासिल करो, नहीं। ठीक है, बल्कि तौफीक तो तुम्हें अल्लाह ताला देंगे। ठीक है, और वास्ता उसका जो बनाया वो नबियों को बनाया, या नबियों के वो रसा को बनाया कि जो हमें बताते हैं कि भाई ये कुफर है, इसे तौबा कर लो, तो जो मान लेता है तो फिर वो तौबा कर लेता है। फिर वो नबी हमें बताते हैं कि भाई ये अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करनी है, जो बात मान लेता है वो ऐसे इबादत करना शुरू कर देता है। तो वो वाली तौफीक जो है ना, यानी वो वाली हिदायत, वो सितारों से नहीं मिलनी, बल्कि वो इंसानी शक्ल के सितारों से मिलनी है ना, जो इंसान की शक्ल में अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे। तो अब यहाँ पर कौन सी वाली हिदायत की बात हो रही है, यहाँ पर जो फिजिकल ट्रैवल होता है तो उसके लिए हिदायत हासिल करने के लिए हमने बनाया उनको। बिहा, उससे, इन यानी इन सितारों से, अन नुजूम के लिए ये जमीर प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ हा का। ठीक है, कि लितहतदू बिहा, ताकि तुम हिदायत हासिल करो इन सितारों से, फी गुलुमातिल बर्री वल बहरी। बर कहते हैं खुश्की को और बहर कहते हैं पानी को, आमतौर पर समंदरों के लिए लफ्ज बहर इस्तेमाल होता है। तो जब रात की तारीकी हो जाती है ना, तो अब तुम्हें रास्ता कैसे नजर आएगा, तुम सितारों के जरिए से रास्ता मालूम करो। ठीक है, इनको अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है और ऐसे अरेंज किया है आसमान के ऊपर कि इससे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का पता चल जाता है। वो तो एक आम आदमी को भी ये पता चल सकता है कि हम नॉर्थ स्टार किधर है, तो ये इस तरफ नॉर्थ ही होगा। लेकिन इसमें और भी कॉन्स्टलेशन हैं कि भाई ये कॉन्स्टलेशन हमेशा इस डायरेक्शन में होती है, और जब मैं वहां पर था तो ये कॉन्स्टलेशन जो है वो इस डायरेक्शन में थी, जो वो झुरमट होते हैं सितारों के। ठीक है, तो अब जब मैं यहां पर आ गया हूं, अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे वहां कैसे जाने, तो चलो मैं उस कॉन्स्टलेशन जिस तरफ मुझे नजर आ रही है ना, मैं उस डायरेक्शन में चलना शुरू करूं, क्योंकि वो कॉन्स्टलेशन उस तरफ थी। अब ये मुझे तो इसकी बाकी तफसील नहीं पता, बस थोड़ी सी जो है वो तुक्का लगा लिया आप लोगों को क्लास में बताने के लिए। यानी समहाउ इस तरीके से बड़ी तफसीली डायरेक्शंस मालूम करते हैं जिनको इसका इल्म आता है, या जिन्होंने सीखा है इसका इल्म। ठीक है, तो सिर्फ ये एक नॉर्थ स्टार वाला चक्कर नहीं है कि अभी नॉर्थ स्टार नॉर्थ में है तो बस पता चल गया, नहीं, इससे ज्यादा तफसील है इसके अंदर, ये कहना चाह रहा था आज। अच्छा, कद फसलनल आयाती, तहकीक के फसलना, हमने खोल खोल करके, खोल खोल दी हमने आयात को, निशानियों को, किसके लिए, यालमून वाली कौम के लिए, यानी उस कौम के लिए जो के जानते हैं, ठीक है, उनके लिए हमने निशानियां खोल दी। क्या मतलब? कद फसलनल आयाती लिकौमी यालमून, तो जो पहले से जानते हैं तो फिर उनके लिए हमने निशानियां खोल दी, तो फिर क्या और जान लें वो। क्या मतलब भाई, जब पहले से जान तो फिर क्या वो सफिशेंट नहीं था? यानी यालमून का डिग्री की सनद तो आपको मिल गई है ना, यानी यहां पर किन्नों की बात हो रही है, जिनको के इल्म की सनद मिल गई है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये इल्म वाले हैं, ठीक है, तो अब जो इल्म वाले हैं यानी पहले से इल्म वाले हैं, तो अब इनके लिए जो है वो आयात खोलकर बयान कर रहे हैं। तो इसका ताल्लुक कुछ बनता है हमारी रीसेंट डिस्कशन से, तो बता सकता है कल की डिस्कशन खास तौर पे हुई थी उसमें, कल की क्लास में इस तरह की एक बात हुई थी। कद फसलनल आयाती लिकौमी यालमून, जो इल्म रखते हैं तो उनके लिए फिर हम अपनी निशानियों को खोल देते हैं। तो उलमाए बनी इसराइल कहां से आ गए बीच में? नहीं, कोई और तफसीरी इल्म शुरू में नहीं होता। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने कि शुरू में जो है ना वो इन्होंने सिर्फ एक इजमाली तौर पर इल्म था इनके पास कि हाँ भाई ये मरने के बाद की एक जिंदगी है, मुझे जो है ना वो उसके लिए कुछ करना है, ठीक है। तो शुरू में तो थोड़ा इल्म था, यानी इल्म तो था इनके पास, लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां खोल दी ना इनके पास, इनके सामने, इससे क्या होगा, इनको मुशाहिदा भी नसीब होगी, ठीक है। तो इल्म का एक जो एडवांस दर्जा होता है ना, वो होता है कि जो चीज आपने, जैसे मिसाल के तौर पर आप किताब में कोई चीज पढ़ रही है कि हाँ भाई ये सूरज ऐसा होता है, सूरज में ये होता है, सूरज में ये होता है, जाके आपने सूरज को देखा तो नहीं है ना, लेकिन इल्म तो आपको हासिल हो गया ना सूरज के बारे में, राइट। किसने बताया आपको ये सूरज के बारे में? भाई जिसने सूरज को जो है वो स्टडी किया था, या जिसने सूरज का इल्म हासिल किया था, या जिसको जो है वो किसी ने बताया था सूरज के बारे में, सही सही इल्म, उससे आपने इल्म हासिल कर लिया, यानी थ्योरी, थ्योरी आपने हासिल कर ली, तो थ्योरी को भी तो इल्म कहते हैं कि नहीं कहते? थ्योरी को भी तो इल्म ही कहते हैं ना। तो इल्म तो आपको हासिल हो गया, आपको जो है वो माशाल्लाह आपने एग्जाम में जो है वो आंसर भी सही सही दे दिए, आपको जो है वो ग्रेड्स भी अच्छे मिल गए, और आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया कि हाँ भाई ये पास हो गई है, या पास हो गए हैं इसके अंदर, तो ये आलिम हो गए। देखा वेगा कुछ नहीं है अभी तक, राइट। देखा वेगा कुछ नहीं है, कब देखेंगे? जब चीजें खुल करके सामने आएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे मदारिस के अंदर जो फिकह की किताब पढ़ाई जाती है ना, तो उसके अंदर नमाज भी पढ़ा देते हैं तो नमाज पढ़ना भी शुरू कर देते हैं, कलमा भी पढ़ा देते हैं तो कलमा पढ़ना भी शुरू कर देते हैं, रोजा, रोजा तो रमजान मुबारक आता है तो फिर रोजा भी रख लेते हैं, जकात का वक्त आता है तो जकात भी दे देते हैं, पढ़ पढ़ा करके जकात भी दे देते हैं। लेकिन जब किताबुल हज पढ़ाते हैं, किताबुल हज, तो फिर पढ़ाने के बाद जो मुदर्रिस साहब होते हैं वो अपने तलबा को ये जरूर कहते हैं कि तुमने पढ़ तो लिया है, समझ में तुम्हें उसी वक्त आएगा जब तुम खुद हज पर जाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। भाई क्यों? इसलिए कि वहां पे जाकर के ये चीजें खुल करके प्रैक्टिकली तुम्हारे सामने आएंगी। हालांकि इल्म इनको मिल चुका है, आलिम का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा इनको, सनद भी मिल जाएगी, दस्तारबंदी भी हो जाएगी, लेकिन समझ में उधर आएगा जब जो है ना जाकर के तुम हज करोगे। तो यही मामला है। कद फसलनल आयाती किसके लिए? लिकौमी यालमून, यानी जिन्होंने मुदर्रिस से, किताब से इल्म हासिल कर लिया, सीख लिया, ऐंठ नहीं गए कि मैं नहीं पढ़ूंगा आपसे, आप कौन होते हैं मुझे पढ़ाने वाले, राइट। तुम कौन होते हो मुझे पढ़ाने वाले, तुम कौन होते हो मेरे उस्ताद बनने वाले, मैंने तुमसे सुनना ही नहीं है, मैंने तुम्हारी सुननी नहीं है, ये नहीं किया उन्होंने, ठीक है, ये नहीं किया उन्होंने। उन्होंने इल्म हासिल कर लिया, अब क्योंकि अल्लाह के रसूल से इल्म हासिल किया था, तो अब इसके ऊपर रिवॉर्ड क्या मिलेगा, इनाम क्या मिलेगा, अब अल्लाह ताला उनको मुशाहिदा करवाएंगे। फसलनल आयाती, ठीक है, अब घोल घोल करके उनको एक्सपीरियंस भी करवाएंगे, ऑब्जर्वेशन भी करवाएंगे, ठीक है, घोल घोल करके चीजों को। अच्छा, वहुवल्लज़ी, और वो है जो अनशाअकुम, जिसने पैदा किया, अनशा युनशिउ इनशाअन, कि उसने पैदा किया, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इंशा अल्लाह के साथ, ठीक है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इंशा अल्लाह के साथ। खुदा के वास्ते इंशा अल्लाह को जो है वो अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं। भाई अपने अकाबरीन की इज्जत का भी तो कोई ख्याल कर लो ना यार, अपने बड़ों की इज्जत का। आज भी नए मुफ्ती साहब भी आ जाते हैं, नहीं, अलग लिखना जो है वो ज्यादा बेहतर है। भाई मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह की मारुफुल कुरान के अंदर अलग नहीं लिखा हुआ, तुम्हें क्या हो गया यार? सोशल मीडिया पे किसी ने वायरल कर दिया, अब आप इतने इन्फ्लुएंस हो गए उन लोगों से कि अब तो आपने फतवा भी देना शुरू कर दिया इसके ऊपर। अकाबरीन की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, ठीक है, खामखा कहीं इंशाल्लाह कहना जो है ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने तो गुस्ताखियां पे गुस्ताखियां की हुई हैं, इसका मतलब है भाई हद हो गई यार। तो अनशा युनशियो इंशान एक अलग चीज होती है, ठीक है, तो जिसने तुम सबको पैदा किया है, अनशाकुम मिन नफ्सियों वाहिदतिन, तुमको एक नफ्स से जो है वो उसने पैदा किया है, ठीक है, वहुवल्लज़ी, और वो वही है जिसने तुमको तुम सबको एक नफ्स से पैदा किया है, व मुस्तकर्रुन व मुस्तौदउन, बस मुस्तकर भी है तुम्हारा ठिकाना भी, ठीक है, मुस्तकर जो है वो ठिकाने को कहते हैं, बेस को कहते हैं, स्टेशन को कहते हैं, एक मोर परमानेंट स्टेशन को, और मुस्तौदउन अमानत रखने वाली जगह, यानी जो टेम्पररी होते हैं जिसके पास आप थोड़ी देर के लिए एक अमानत रखवा देते हैं, फिर आप वहां से वापस ले लेते हैं, ठीक है। वदियात करना भी उर्दू में इसको कहते हैं, वदियात कर दी फलानी चीज, वदियात कर दी, अमानतन दे दी, ठीक है। तो वहुवल्लज़ी अंशाकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व मुस्तकर्र व मुस्तौदा, ठीक है, बस ठिकाना है और एक अमानत रखी जाने वाली जगह है। कद फसलनल आयाती, तहकीक के हमने खोल खोल कर सुना दिए, लिकौमी यफकहून, अब यहां पर जो है वो मजीद समझ रखने वालों के लिए, पीछे जो है वो इल्म रखने वालों के लिए, अब जो है वो समझ रखने वालों के लिए जो सोचते हैं, यानी फकाह यफकहू या फकाहत जो है वो एक और भी बेहतर दर्जा है इल्म का, कि भाई इल्म तो होता है ना कि आपने अल्फाज पढ़ लिए, लेकिन इवन थ्योरी भी समझ में नहीं आती, रट लेना जो होता है ना वो भी एक दर्जे का इल्म ही होता है, कि हाँ भाई आपने पढ़ लिया रट लिया कि इसमें ये है इसमें ये है इसमें ये है, ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है, लेकिन आर यू एबल टू ज्वाइन द डॉट्स, बेशक थ्योरेटिकली हो, ठीक है, क्योंकि अभी फसलन आयात तो बतौर इनाम के मिलेगा ना, लेकिन जो आपने समझ के पढ़ा है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे भी हम अपनी बात भी करते हैं, हम भी क्लास में बैठे होते हैं, बहुत सी चीजें सुन लेते हैं, हमारी नॉलेज में सम फैक्ट्स एंड फिगर्स में इजाफा हो जाता है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू ज्वाइन द डॉट्स, ठीक है, हम कनेक्ट नहीं कर पाते बहुत सारी चीजों को। तो फकाहत क्या है कि कनेक्ट भी कर पाए, मिसाल के तौर पर हम कई दफा रिसेंटली सुन रहे हैं और अभी थोड़ा ज्यादा जो है वो मिसाल जिसके दिल में एक बात आ रही है कि भाई रात को सोना रात को सोना रात को सोना है ना, तो अल्लाह ताला ने भिजवाई ऐसी बहुत सारी चीजें, तो उनको भी देख देख करके सुन सुन करके और अहवाल अहवाल को देख करके भाई तबीयतें कितनी खराब हो रही है, अपने हजरत की सेहत को देखा कितनी सेहत खराब हुई, सारी रात जागते थे, वो एक एक्सेप्शन थे भाई, वो सरहद के मुहाफिज थे, सरहदों के मुहाफिज जो होते हैं ना उनको रातों को जागना पड़ता है, चाहे उनकी तबीयत खराब हो चाहे उनकी सेहत खराब हो, तो वो तो भाई सरहदों के मुहाफिज थे, और ये खाली एक एक वो नारा नहीं है सरहदों के मुहाफिज, बल्कि उनसे मिलने के लिए लोग जो है वो सारी दुनिया से आ रहे होते थे, और वो लोगों से मिलने के लिए हर वक्त सफर में रहते थे, जो सफर में रहते हैं उसका तो वैसे ही दिन रात जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, स्पेशली अगर जो है वो ज्यादा दूर का सफर हो, ठीक है, अमेरिका का सफर तो पहले ऐसे करते थे जैसे कि पता नहीं पड़ोस में जा रहे हैं, साल में 3 दफा अमेरिका जाते थे, फिर 2 दफा हुआ, फिर 1 दफा हुआ, फिर उसके बाद वो अमेरिका का सफर 2005 में जाकर के खत्म हुआ, यूरोप का सफर, यूरोप भी तो पाकिस्तान से कितना दूर है, फिर मलेशिया का सफर, ऑस्ट्रेलिया का सफर, न्यूजीलैंड का सफर, राइट, और कोई मुल्क नहीं होगा जिसको कल नहीं छोड़ा। तो भाई जो शख्स ऐसी जिंदगी गुजारे, और क्या आपने मतलब इसलिए कर रहे हो साइट सीइंग के लिए कर रहे हो ये सफर, अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए ना, तौबा के पैगाम को पहुंचाने के लिए सफर कर रहे होते थे, तो सेहत तो होती है ना फिर मुतासर, लेकिन क्या बाकी लोग कर रहे हैं इस तरह का काम, बाकी लोगों से मिलने के लिए दुनिया जहां से लोग आते हैं क्या? उनके पास क्या जस्टिफिकेशन है? हजरत की इत्तेबा करनी थी, हजरत रात को जागते थे, इस वजह से मैं भी रात को जागूंगा। अल्लाह के बंदे, तुम्हारे और हजरत की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है, बेवकूफी की बातें करते हो। ठीक है, तो फत्तबे सबीला मन अनाब इलैया, बेशक अल्लाह का हुक्म है, लेकिन उस हुक्म के अंदर भी तफसील है। ठीक है, तो बहरहाल ये बातें काफी ज्यादा रिसेंटली हो रही हैं, तो अब हम भी सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट इससे इनकार तो कर नहीं सकते ना, इनकार कैसे करेंगे इस चीज से, जबकि जो खुदाई वो है हमारे आज के साइंसदान और डॉक्टर हजरात और खवातीन डॉक्टर, उन्होंने जब इसके ऊपर अपना स्टैम्प लगा दिया, अब कैसे इनकार करोगे? मौलवी साहब की बात का इनकार करना तो बड़ा आसान काम था, लेकिन अब कैसे इनकार करोगे? ठीक है, तो अब मान तो रहे हैं इन बातों को, लेकिन बहुत सारी इस तरह की चीजें जो कि हम अब मान रहे हैं कि भाई हाँ वाकई ऐसा है, वाकई ऐसा है, लेकिन हम उनको जो है ना वो रिलेट नहीं कर पाते हैं रोजमर्रा के अहवाल के साथ। जैसे मिसाल के तौर पर किसी शख्स की जिंदगी में बीमारियां, ठीक है ना, और दूसरी तरफ वो इस बात को मान रहा है कि भाई रात को जागने से बीमारियां होती हैं, ठीक है ना, रात को जागने से बीमारियां होती हैं, इसकी जिंदगी में अजीब अजीब जो है वो बीमारियां हैं, लेकिन ये इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर रहा कि भाई मेरी जिंदगी में फिर बीमारियां जो हैं वो इस वजह से है ना कि मैं रातों को जाग रहा हूं। नहीं, कनेक्शन है ही नहीं, इन्फरेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो फिर आपको इल्म तो हासिल हो गया बीमारियों का, और ये भी आपके इल्म में है कि आपको भी बीमारियां लगी हुई है, लेकिन समझ में नहीं आ रही आपको बात। जैसे मिसाल के तौर पर सिगरेट का डब्बा देखा है ना कभी, सिगरेट का डब्बा है, पहले तो जो है ना वो खाली उस पर लिखा हुआ होता था पाकिस्तान में, सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुजर है। ठीक है, वो लिखी हुई चीज से भी इल्म हासिल हो जाता है कि भाई सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुजर है, वजारत सेहत ये भी सिर्फ साथ लिखा होता था। ठीक है, अब जो है उन्होंने तस्वीरें डालनी शुरू कर दी, ऐसी ऐसी भयानक तस्वीरें होती हैं, किसी का होंठ गल गया तो किसी के जो है वो फलानी चीज गली हुई चीजों की, यानी इंसान की शक्ल है उसके ऊपर गले हुए जो आज़ा है उसकी तस्वीर उन्होंने सिगरेट के डिब्बे में डाल दी। अब सिगरेट खरीदने वाला इनकार तो नहीं कर रहा कि नहीं नहीं ये तो बस फितरे दज्जाल है, ये हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो डिसेप्शन है, राइट, ये तो मीडिया का एक हिप है, ऐसा कुछ नहीं है। सिगरेट खरीदने वाला उस तस्वीर को बिल्कुल सही मान रहा है, डाउट नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन जो है ना कि क्या मुझे सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ये नहीं आ रहा उसके समझ में, राइट। अच्छा, बीमारियां हैं, बीमारियों के ऊपर रोता भी बहुत है, लेकिन ये नहीं कि सिगरेट पीने की वजह से मुझे बीमारी है, ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा। ये तो सारी सिर्फ मिसालें हैं, ठीक है ना। मकसद क्या समझाने का कि भाई ये जो फकाहत है ना, फकाहत ये खाली इल्म हासिल हो जाने से भी हासिल नहीं होती, डिग्री हासिल हो जाती है रटने से, और ज्यादा जो है वो आप चीजों को पढ़ लें और आपको डिग्री हासिल हो जाती है, फकाहत एक अलग चीज होती है। ठीक है, इसी वजह से हर आलिम को भी फकीह नहीं कहा जाता। ठीक है, तो अब ये जो फकाहत है ना, फिर इसके लिए फिर जाहिर है वो तो उस बंदे का अपना एक फेल है कि भाई गौर से बात को सुनो, तवज्जो से सुनो, उसकी तकरार करो, उसकी गहराई में जाओ, तदब्बुर करो, ठीक है ना, उसको रिलेट करो बाकी चीजों के साथ, तब तुम्हें फकाहत हासिल होगी। ये तो उसके करने का काम है, लेकिन जो फकी हैं यानी जिनको समझ हासिल हो गई, ठीक है, जिनको ये बातें समझ में भी आ रही हैं, जो कि डॉट्स को कनेक्ट भी कर सकते हैं या कर पा रहे हैं अब, ठीक है, जो डॉट्स को अब कनेक्ट कर पा रहे भी हैं, उनको क्या करना चाहिए? ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, तो वो हम इंशाल्लाह खुलासे तफसीर में उसको डिस्कस करते हैं। खुलासे तफसीर शुरू कर लेते हैं, फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला फाड़ने वाला है दाने को और घुटनियों को, इन अल्लाह फालिकुल हब्बी वन्नवा, यानी जमीन में दबाने के बाद जो दाना या घुटली फूटती है ये अल्लाह ही का काम है। ठीक है, जैसे में याद आया, एक मिनट, क्या उन्होंने मैसेज लिखा है कि जैसे किसी ने बुरा किया तो ये तो पता है कि उसने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन ये कनेक्ट नहीं कर रहा कि मैंने भी कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको मुझ पर मुसल्लत किया है। ठीक है, ये भी एक फकाहत ही है ना, ये तो किसी ने मेरे साथ बुरा किया लेकिन अपने बुराई के साथ उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा कि भाई अल्लाह ने, हालांकि अल्लाह को अजीज भी मानता है, अल्लाह को जो है वो अलीम भी मानता है, अल्लाह ताला को जो है वो जजा और सजा देने वाला भी मानता है, लेकिन अपने अमल के साथ इन सारे बातों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इल्म तो है इसके पास, फकाहत नहीं है इसके पास। ठीक है, तो बहरहाल तो अब यहां पर फरमाते हैं कि जमीन में दबाने के बाद, अब तो गुठली को जब जमीन में दबा दिया जाता है ना, तो फिर वो बड़े अरसे के बाद जो है वो बिलाखिर उसके जो आउटर शेल होता है वो फटता है, पर उसके अंदर एक अंदर इस गुठली होती है, आम की गुठली। जो हमें कब पता चला ये सारी बातें, हमने तो नहीं जमीन के अंदर जाके देखा है सब कुछ, तो पता चला कि जी वो हम बेटे साहब को शौक हुआ आम जो है ना उसके हमने पौधा लगाना है, तो उन्होंने कहीं पे पड़ा वड़ा देखा वेखा, तो पता चला अच्छा ये आप गुठली को अगर किसी किसी कागज में रैप करके अगर आप फ्रिज में रख दें ना, गीला करके फ्रिज में, पता नहीं क्या उसकी तफसील थी, रख दें, तो फिर वो ऊपर का शेल जो है वो नरम पड़ जाता है। अब उस शेल को जो है वो आप इवन हाथ से भी तोड़ करके निकाल सकते हैं, और उसके अंदर जो है ना वो असल गुठली होती है। उस गुठली को अगर आप जमीन में बोएं तो उससे जल्दी पौधा निकल आता है। जाहिर है अगर आप उसको ये काम खुद करके अगर अंदर बोएंगे तो वो टाइम जो आपने फ्रिज में उसको लगाया है वो टाइम जो है उसको नहीं लगाना पड़ेगा, तो जमीन से वो जल्दी पौधा निकल आएगा, वरना जमीन के अंदर ही वही वाला काम होगा जो कि फ्रिज के अंदर आपने किया है, तो जाहिर ज्यादा टाइम लगेगा उसके अंदर। बहरहाल तो इस तरीके से फिर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है वो ये सारे टेक्निक्स भी इस्तेमाल इंसान ने करनी शुरू कर दी। तो बहरहाल ये गुठली के बारे में चंद बातें हो गई। आगे फरमाते हैं कि वो जानदार चीज को बेजान चीज से निकाल लाता है, जैसे नुक्फे से आदमी पैदा होता है। ठीक है, तो इंसान को जैसे अल्लाह ताला पैदा करता है, एक जैसे मुर्गी का अंडा, अब यहाँ पे वो भी मुर्गी के अंडे वगैरह की भी मिसाल दी आसान तर्जुमे पुरान के अंदर, कि वो एक बेजान चीज लगती है। ठीक है, हम मुर्गी का अंडा खाते हैं, हम लोग तो खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वो जो प्योर वेजीज होते हैं ना, वो उन्होंने क्या किया। अच्छा मजे की बात है ना ये, भाई कल जो बात हो रही थी कि जो काफिर होता है ना, काफिर तो वो अजीब किस्म का होता है, डिस्ट्रैक्टेड किस्म का होता है, और अजीब जो है ना वो उसने बात नहीं माननी होती ना, तो फिर वही। तो अब जो प्योर वेजीज आजकल के होते हैं, या प्रो लाइफ कहते हैं बल्कि वो अपने आप को, प्रो लाइफ, ठीक है ना, तो मुर्गी का अंडा नहीं खाते, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते। ठीक है, फिर क्या खाते हो भाई, पत्थर खाते हो क्या? नहीं, पत्थर नहीं खाते। ये भी नहीं कि पत्थर खाना शुरू कर दो यार, पत्थर भी नहीं खाते। क्या खाते हैं? वेजीज खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। ठीक है, तो वेजिटेबल क्यों खाते हो? वेजिटेबल के अंदर लाइफ नहीं होती क्या? मतलब अगर तुम माइक्रोस्कोप के नीचे रखो किसी भी वेजिटेबल को, किसी भी जो है वो आपके ग्रेन्स को, तो लाइफ की तो एक किस्म उसके अंदर भी होती है। एमीबा पता नहीं क्या क्या तुम्हें मिल जाएगा, वो जमाना मुझे याद नहीं है, सेल की जो सेल लेवल की रिसर्च थी। ठीक है, तो अब जो है ना, नहीं वो अंडे में जो है वो लाइफ होती है, हम कहते हैं नहीं अंडे में कोई लाइफ नहीं होती है ना। ठीक है, वो लाइफ हम तो उसको मुर्दा कहते हैं ना, क्यों क्यों कहते हैं मुर्दा, कुरान ने उसको मुर्दा कहा। ठीक है, या जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको ये नहीं कहा कि तुम इसको जिंदा, ये जिंदा चीजों में से नहीं है। तो अब जो है वो हम उसको खा रहे हैं कि भाई ठीक है, हमने तो मान ली ना बात जो उन्होंने कहा कि नहीं इसको तुम खा सकते हो, जिंदा चीज को तो खाना जायज नहीं है इस्लाम के अंदर ना, आप जिंदा तो किसी मछली को पकड़ के जिंदा खा लें, ठीक है, मुर्गी को जो है वो आप जिंदा खा लें, ये तो जायज नहीं है। अंडे वो जायज है, क्योंकि अंडा जो है वो शरी इस्तेला के अंदर जिंदे में नहीं आता। हम वो साइंटिफिक इस्तेला में जाओगे तो फिर तो कोई हर चीज ही जिंदा में आ जाएगी, है ना। एटम, एटम क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या घूम नहीं रहे होते। अगर आप जिंदगी को डिफाइन करते हैं मूवमेंट से, तो हर मिनरल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या मूव नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो मूवमेंट तो ना हुई ना फिर जिंदगी, वरना तो फिर तुम हर चीज ही को खाना शुरू कर, मर जाओ भाई, तुम रोजा रखो और मर जाओ उसके बाद। ठीक है, कुछ ना खाओ, क्योंकि हर चीज के अंदर मूवमेंट होती है। ठीक है, तो बहरहाल ये तो भाई मानने में खैर है जो फरमाया है कि खा लो तो खा लो, सही है, ज्यादा बुकराती बनने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा बुकरादी बनने की। तो बहरहाल तो हम तो फिर अंडे को जो है वो मुर्दा में कंसिडर करते हैं, खा लेते हैं आराम से भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करके, बहुत मजे का होता है। तो फालक, तो अल्लाह ताला जो है वो अंडे में से जो कि मुर्दा चीज है उसमें से जो है वो जिंदगी पैदा करवा देते हैं। ठीक है ना, वो मुर्गी के नीचे रख दो 21 दिन के लिए, तो वो अंडा जो है वो माशाल्लाह उसमें से चूजा निकल आता है, एम्ब्रियो पैदा हो जाता है, एम्ब्रियो जो है वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, आखिर जो है वो पहले तो मुर्दा था। ठीक है, तो वो बेजान चीज को जानदार चीज से निकालने वाला है, जैसे आदमी के बदन से या मुर्गी के बदन से जैसे अंडा निकलता है तो बेजान चीज निकलती है मुर्गी के बदन से, उसी तरह इंसान का भी ये मामला है। और अल्लाह ये है कि जिसकी, अच्छा, जिसकी ऐसी कुदरत है सो तुम उसको इबादत, उसकी इबादत छोड़कर कहाँ गैरुल्लाह की इबादत की तरफ उल्टे चले जा रहे हो। ठीक है, तुम उसकी इबादत छोड़कर, यानी ये तफसीरन बयान किया, कहाँ अन्ना कहाँ तो फकून गैरुल्लाह की इबादत की तरफ उल्टे चले जा रहे हो। ठीक है, अब ये जो फरमाया फअन्ना तो फकून, ये क्या चीज है? ठीक है, ये क्या चीज है? अभी थोड़ी देर पहले एक बात साजिश ने कही थी, अगर किसी को याद हो, कि ये क्या हो रहा है, फअन्ना तो फकून, ये क्या हो रहा है? कोई बताएगा आप में से ये क्या हो रहा है? इन अल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा, ये भी फरमा दिया, फिर ये भी फरमा दिया, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य, ये भी बता दिया। ठीक है ना, अब क्या हो रहा है? ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून, ये क्या हो रहा है? पीछे क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है? यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत हई के लफ्ज तक क्या कर रहे थे और ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून फरमा करके क्या कर रहे हैं? अब ये क्या कर रहे हैं? जी, डिस्ट्रैक्शन की वजह से उल्टी सीधी बातें करना, नाउज बिल्ला। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कर रहा है? उसका जवाब तो आप ये नहीं दे सकती, वरना तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो पहले अल्लाह ने क्या किया और अब अल्लाह क्या कर रहे हैं? पहले अल्लाह ने हुज्जत तमाम कर दी, फिर ठीक है ना, बस हुज्जत तमाम कर दी, अब क्या किया? फिर तंबीह फरमाई। अच्छा, और कुछ और? अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि अभी इस पे हम आते नहीं, तो क्या कहा था उस वक्त कि देखें, अल्लाह ताला ने पहले तो दे दिया इल्म, ठीक है ना, पहले इल्म दे दिया, अब क्या कर रहे हैं? अब ज्वाइनिंग द डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट्स, ठीक है ना, पहले इल्म दे दिया कि ये होता है और मुर्दे में से जिंदा निकालते हैं, जिंदा में से मुर्दा निकालते हैं, हब को जो है वो फाड़ते हैं और नवा को जो है वो फाड़ते हैं, ठीक है ना, इल्म हासिल हो गया किसको? काफिर को, क्योंकि ये बातें जो है वो सबसे हो रही है, सिर्फ मुसलमान को तो ये बातें नहीं बता रहे, काफिर को भी ये बातें बता रहे हैं, और काफिर इसका इनकार नहीं कर सकता। ठीक है कि भाई ये सारी चीजें तो होती हैं, इंसान तो ये काम नहीं कर रहा होता, ये काम तो फिर कोई बड़ा कर रहा होता है, जिसको वो भी मानते थे, अल्लाह को तो मानते थे ना, पहले कई दफा बात हो चुकी, अल्लाह को तो मानते थे, बैतुल्लाह कहते थे अल्लाह के घर, ठीक है, तो अल्लाह को मान, तो अल्लाह कर रहे हैं सारे काम, लेकिन अब करना क्या चाहिए भाई, जब ये इल्म हासिल हो गया तुम्हें, नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, अब तुम्हें करना क्या है? नहीं, यहां पे समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे करना क्या है भाई? अपनी जिंदगी को तब्दील करना है ना, राइट? तुमने जो है वो जो झूठे माबूद बनाए हुए हैं, तुमने जो है वो जो शिर्क किया हुआ है अल्लाह ताला के साथ, ठीक है, तुमने जो है वो दूसरे मखलूक को जो है वो कहा हुआ है कि वो ये काम करता है, वो ये काम करता है, उनको छोड़ना भी तो है ना भाई, राइट? और अल्लाह की तरफ पलटना भी तो है ना भाई, अल्लाह की तरफ अब रुजू करना है ना, ठीक है, इधर उधर किधर भागे चले जा रहे हो? ये काम कौन करता है? ये इल्म वाला ये काम करता है, समझ वाला ये काम करता है, या जो मुदर्रिस होता है या जो दाई होता है वो ये काम करता है, कि सुनने वालों को इल्म तो दे दिया लेकिन अब जो है ना वो डॉट्स भी खुद ही कनेक्ट करके बताने पड़ते हैं, क्योंकि दे आर नॉट केपेबल ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स देमसेल्व्स। दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट द डॉट्स देमसेल्व्स। तो उनको फिर जो है ना वो आगे का भी बताना पड़ता है कि भाई अब करना ये है, अब ये करना है तुम्हें कि अल्लाह की तरफ लौटना है, जो कि तुम खुद मान रहे हो कि हाँ वो ये सारे काम करता है बगैर किसी की इंटरफेरेंस के, बगैर किसी की हेल्प के, तुम खुद मान रहे हो ना। छोड़ो ना फिर दूसरों को यार अब, ठीक है। तो क्या फरमाया उन्होंने, फर्स्ट प्रोवाइड्स रिलेटेबल एविडेंस देन शोज व्हाई इट मैटर्स, देन शोज व्हाई इट मैटर्स। तो आई वुड रादर से के देन शोज व्हाट टू डू नेक्स्ट, राइट, व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है ना। लीव द अदर पाथ्स एंड टर्न टू अल्लाह ओनली, ठीक है। एक्शनेबल, एग्जैक्टली एक्शनेबल नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। एग्जाम्पल एक्शनेबल एक्शन आइटम बताओ अब, ठीक है। तो जिसको कहते हैं उंगली पकड़ करके अब आगे चलाना, सही। तो अब जितना एक्शन आप बता सकते हैं उतना बता दें, हम कमजोर लोग हैं, हम भी बड़ा बात यानी अनफॉर्चुनेटली उंगली पकड़ के जो है वो हमें भी चाहिए कि हम भी चलाएं लोगों को, लेकिन हमारे पास अपनी जो है वो एक से एक लिमिटेशंस ये कर ही नहीं पा रहे हैं ये वाला काम। अल्लाह तौफीक अता फरमाए काम करने के लिए, लोगों को उंगली पकड़ करके भी चलाएं, क्योंकि अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा ये क्या करना है। तो ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून, ठीक है। तो मुफ्ती शफी ये मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ये है कि जिसकी ऐसी कुदरत है सो तुम उसकी इबादत छोड़कर कहां गैरुल्लाह की इबादत की तरफ उल्टे चले जा रहे हो, ठीक है। तो हमें कम से कम नियत तो रखनी है ना, अल्लाह ताला से दुआएं तो करनी है कि अल्लाह ये जो नेक्स्ट स्टेप है ना एक्शनेबल आइटम डिफाइन करने का और उसको जो है वो एग्जीक्यूटेबल शक्ल में लेकर के आने का, अल्लाह आप हमारी मदद फरमा करके हमें भी इसकी तौफीक अता फरमा दें कि हम भी लोगों को इस तरीके से गाइड कर सकें, क्योंकि अदरवाइज मेजोरिटी जो है ना वो खुद से कुछ करने के काबिल नहीं है। अगरचे कि आप उनको कन्विंस भी कर लें, अगरचे कि आप उनको जो है वो यानी बात समझा दें, लेकिन कर नहीं सकेंगे वो खुद से, करने वाले फिर एक आध ही होते हैं, ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड भी अंग्रेजी जुबान में उनको कहा जाता है, लेकिन वो असल में सेल्फ मोटिवेटेड भी नहीं होते, वो भी अल्लाह मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन आम जुबान में उनको सेल्फ मोटिवेटेड कहा जाता है। बहरहाल तो फरमाया कि वो अल्लाह ताला सुबह सादिक का रात में से निकालने वाला है, यानी रात खत्म हो जाती है और सुबह सादिक जाहिर हो जाती है, और उसने रात को राहत की चीज बनाई है कि सब थके थकाए सोकर आराम पाते हैं, पाया करते थे एक जमाने में, वो जमाना गुजर गया। देखें दज्जाल का, जब दज्जाल जाहिर होगा तो उसके जाहिर होने की एक बड़ी निशानी क्या नबी अलैहिस्सलाम ने बताई कि दज्जाल जब जाहिर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, क्या बताया नबी अलैहिस्सलाम ने, ठीक है ना। बहुत सारी बातें बताई लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ी जो निशानी है ना वो क्या है कि एक दिन कितना लंबा हो जाएगा, पूरे साल के बराबर हो जाएगा। क्या मतलब भाई, एक दिन पूरे साल के बराबर कैसे हो जाएगा? क्या दज्जाल जब निकलेगा तो सूरज जो है वो उसकी रोटेशन स्लो हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सूरज की रोटेशन जो है वो स्लो, या जमीन की रोटेशन जो है वो सूरज के गिर्द वो चेंज हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, वरना पूरा कयामत आ जाएगी भाई। फिर अगर जमीन की रोटेशन जरा सी इधर उधर हो गई ना, ठीक है ना, हत्ता कि चांद भी अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ना, कयामत आ जाएगी और कुछ भी नहीं होगा फिर उसके बाद, ठीक है ना। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाया, दज्जाल के आने पर दिन जो है वो एक साल के बराबर हो जाएगा। क्या मतलब इसका, सीधा सा इसका मतलब ये है कि रोशनी जो है ना वो एक साल तक मुस्तकिल रोशनी रहेगी, मुस्तकिल रोशनी रहेगी, पूरा एक साल मुस्तकिल रोशनी रहेगी, खलास, यही मतलब है इसका और कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब ये मजीद तफसील इसमें ये हो सकती है कि पूरी रोशनी पूरे ग्लोब के ऊपर पूरे साल ना रहे, बल्कि जो सिग्निफिकेंट मुकामात हैं, जो बड़े शहर कहलाते हैं, जहां पे आबादियां होती हैं बड़ी तादाद में, जहां पे पूरी सिविलाइजेशन जो है वो बसती है, ठीक है ना, उन बड़े शहरों के अंदर 24 आवर लाइटिंग, 24 आवर लाइटिंग, और ये 24 आवर मल्टीप्लाई बाय 365 डेज ऑफ अ ईयर, ठीक है। आर्टिफिशियल मून वाला कॉन्सेप्ट जो कि अब कई सालों से, बल्कि ये चीज जो है वो वेल नोन है कि रिफ्लेक्टिव मिरर्स जो है वो स्पेस के अंदर ऐसे लॉन्च किए जा रहे हैं कि वो रिफ्लेक्टिव मिरर्स जिस वक्त ये उनको प्लग इन करेंगे ना, या जिस वक्त वो उनको टर्न ऑन करेंगे, तो क्या होगा कि जिस जगह के ऊपर वो रिफ्लेक्टिव मिरर जो है वो लगा हुआ होगा, तो वो रिफ्लेक्टिव मिरर सूरज की रोशनी को लेगा, चाहे जहां कहीं भी सूरज हो, ठीक है भाई। उस इलाके में सूरज छुपा हुआ है ना, किस तरह से छुपा हुआ है, खाली जो है वो होराइजन के पीछे सूरज चला गया, वरना सूरज गायब तो नहीं हो गया। अब उसी होराइजन के पीछे जो सूरज है वो इस इलाके के लोगों को नजर नहीं आ रहा, रियाज, रियाज के लोगों को नजर नहीं आ रहा, इस वजह से रियाज में लाइट वो अंधेरा हुआ है। अगर रियाज के बिल्कुल ऊपर स्पेस में जा करके, या इवन ज्यादा स्पेस में जाने की भी जरूरत नहीं है, आपके अपना जो ऊपर वाले लेयर्स हैं, जो कौन से होते हैं वो टेक्नोस्फेयर या पता नहीं कौन सा वो बिल्कुल आखिर वाला स्फेयर होता है, वहां पे जहां पे अगर आप सैटेलाइट्स को रखते हैं, वहां पे रिफ्लेक्टिव मिरर को लगा दें, तो अब सूरज की रोशनी उस रिफ्लेक्टिव मिरर पे पड़ेगी, और उस रिफ्लेक्टिव मिरर की जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर के रियाज शहर को रोशन कर देगी, खलास, कोई मुश्किल काम नहीं है ये, ऑलरेडी जो है ये काम शुरू हो चुका है, ठीक है। कहने का मकसद यहां पर क्या है, मकसद ये है कि हर वक्त की रोशनी का होना, इसका ताल्लुक अल्लाह की रहमत के साथ है, इसका ताल्लुक नेकी के साथ है, इसका ताल्लुक खुशखबरी के साथ है, या इसका ताल्लुक रूए जमीन पर सबसे बड़े फितने के साथ है। किस चीज के साथ इसकी निस्बत हुई, सबसे बड़े फितने के साथ इसकी निस्बत हुई ना, जो क्या है, फितने दज्जाल। तो रोशनी का होना और हर वक्त की रोशनी का होना, ये कोई खैर नहीं है, ये खैर नहीं है। वैसे तो नजर आ रही है, ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है कि कितनी जो है वो बीमारियां जो है वो इंसानों की जिंदगियों के अंदर, ये अभी आए थे एक हमारे इंडिया के मौलाना साहब, वो बता रहे थे कि इंडिया का कोई साइंसदान है ना, उसको पता नहीं अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, अच्छा डॉक्टर है वो, मेडिकल डॉक्टर है, सबसे बड़ा उसको अवार्ड मिला है, तो उसने बयान दिया है, अच्छा डॉक्टर भी किस चीज का है वो, ये डायबिटीज का डॉक्टर है ना, तो उसका बयान आया है कि उसने कहा है कि अगर आप लोग रात को जल्दी सोना शुरू कर देना, तो आप लोगों को हमारी दवाओं की जरूरत ही नहीं रहेगी, राइट, ये जितनी डायबिटिक मेडिकेशंस है ना, आपको जरूरत ही नहीं रहेगी इनकी, ठीक है। तो यार ये डायबिटीज तो ऐसा मर्ज है ना, कि कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी दुश्मन को बद्दुआ देनी हो ना, तो उसको बद्दुआ दो कि उसको शुगर का मर्ज हो जाए, क्योंकि शुगर का मर्ज इतना खौफनाक मर्ज है, ठीक है, स्लो पॉइजन, और जिंदगी की हर चीज मुतासर होना शुरू हो जाती है इसकी वजह से। तो भाई सारे साइंसदान और डॉक्टर आजाद क्या कह रहे हैं, रात को सोने के साथ इसका ताल्लुक, ठीक है। तो भाई ये अब नबी अलैहिस्सलाम की साइलेंट किलर भी कहते हैं इसको, तो एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन अप्रैल 2026, अल्लाह अकबर, उन्होंने तो भाई वो कहीं पे न्यूज पढ़ करके भी बता दिया है, अप्रैल 2026 ये रिफ्लेक्टिव मिरर्स जो हैं इनकी प्लानिंग करके बैठे हुए ये लोग, तो दज्जाल जो है वो फिर आवे आवे, क्या कहते हैं आवे आवे वाला मामला चल रहा है इस वक्त, ना रहम करें हमारे ऊपर, अब तो भाई मीडिया से खबरें लेना छोड़ दें खुदा के वास्ते। अच्छा तो ये है मामला ना भाई, ये के हिसाब से से इनकी रफ्तार कहाँ पहुंचे थे, यानी रात खत्म हो जाती है, सुबह सादक बहर हो जाती है, और उसने रात को राहत की चीज बनाई कि सब थके थकाए सोकर आराम पाते हैं, यहाँ यहाँ तक पढ़ा था, आगे थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेते हैं, और सूरज और चांद की रफ्तार को हिसाब से रखा है, यानी उनकी रफ्तार मुंजबित है, जब्त, ठीक है, मजबूत, उनकी रफ्तार मजबूत है बिल्कुल, जब अभी बात हुई ना सारी, अगर उनकी रफ्तार आगे पीछे हो जाए ना भाई, कयामत, कयामत से कम कोई काम नहीं होने वाला है फिर, ठीक है, दज्जाल वज्जाल फिर छोटी चीज रह जाएंगे, हम दज्जाल की खबर भी मीडिया से लेते हैं वो मीडिया पे दिखाते हैं ना वो बच्चों का कार्टून दज्जाल, एक एक आंख होगी उसके ऊपर, और बड़ा खौफनाक किस्म का जो है वो दियो किस्म की कोई चीज होगी, वन आइड दियो, अब सब समझ रहे हैं कि दज्जाल कोई ऐसी चीज होगी, एक आंख लगी हुई होगी उसके ऊपर और बहुत ही खौफनाक किस्म का टी रेक्स किस्म की कोई चीज होगी। हालांकि हदीस में आगे से क्या पता चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो ईमान का फितना होगा और लोग उसको अपना पेशवा बना लेंगे, ठीक है, और वो मसीहा बन करके आएगा, हदीस से ये पता चलता है, ठीक है। इन्होंने बाकायदा दज्जाल का एक इमेज बनाया है, बच्चे बच्चे के दिमाग में जो है ना वो इमेज है दज्जाल का, और उसको उल्टा क्या लिया है हम लोगों ने, बेवकूफ, राइट, कि ये जो ना कार्टून के अंदर जो है वो वन आइड कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो इससे फिर वो मुसलमान बच्चे जो है ना वो वन आइड क्रीचर से जो है ना वो फेमिलियर हो जाएंगे और इस वजह से वो दज्जाल को फिर तस्लीम करने से इनकार कर देंगे। भाई मतलब वो बहुत ही अच्छा इंसान बन करके आएगा, बहुत ही अच्छा इंसान बन करके आएगा, ठीक है, और लोगों को मुसीबत से निजात जो है वो बजाहिर दिला 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 करके उनकी हमदर्दियां जो है ना वो समेटेगा, ये है दजल, वरना वो उस शक्लो सूरत में कोई भयानक किस्म की कोई चीज आ जाए उसमें कौन सा दजल है भाई, उससे तो जो है वो छोटे बच्चे भी जो है वो डर के भागना शुरू कर देंगे, ठीक है, भयानक चीज से तो हर बंदा डरता है, दजाल से कोई थोड़ी डरेगा कोई, समझ में आ रही है कि नहीं, ये मसला है। तो फरमाया कि उनकी रफ्तार दज्जाल एग्जैक्ट किस जगह आएगा, इस्फहान का नाम है हदीसों में, अब मुझे नहीं पता वो ज़ईफ़ हदीसें होते हैं, लेकिन इस्फहान, इस्फहान पता है ना किधर है, ईरान के अंदर है, तो वो यहूदियों में से होगा, ठीक है, तो उसकी मौत जो है ना वो खुल करके, जो यहूदी होंगे ना खुले यहूदी, उधर जा करके उसकी मौत होगी, लेकिन उसकी जो आमद होगी ना आमद, वो जरूरी नहीं है कि खुले हुए यहूदी हो, जिसको के मुसलमान जो है ना वो यहूदी मानते हो, नहीं वो जरूरी नहीं है ना, वो तो फिर मुसलमानों में फिर एक बड़ा अच्छा सा मुसलमान बन के जाहिर होगा, और उसको जो है वो मुसलमान, जो जाहिर ईमान के बगैर वाले मुसलमान होंगे जो कि अकीदा वकीदा उनको पता ही कुछ नहीं है, ऐसे अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं, ऐसे मुसलमानों के दरमियान वो फिर लीडर बन जाएगा जैसे आजकल बन रहे हैं। तो फरमाया कि उनकी रफ्तार मुंजबित है जिससे औकात के इंजिबात में सहूलत हो, ठीक है, ये के हिसाब से उनकी रफ्तार हो, उनकी रफ्तार भी हिसाब से, ये सब पीछे बात हो गई, ये ठहराई हुई बात है ऐसी जात की जो कि कादिर मुतलक है कि इस तरह हरकत पैदा करने पर उसको कुदरत है, और बड़े इल्म वाला है कि इस रफ्तार की मसलहतें और हिकमतें जानता है, इसलिए इस खास तरह पर ठहरा दिया, ठीक है। कुछ अच्छी अच्छी बुक्स हैं इस्लाम एंड साइंस वगैरह के मौजू के ऊपर, हर बुक नहीं होती अच्छी, क्योंकि ज्यादातर जो है ना ये उलमा की निगरानी में तो ऐसी किताबें नहीं लिखी जा रही होती हैं, तो बस कुछ मुसलमान होते हैं जिन्होंने ज्यादा उधर रिसर्च कर ली होती है तो वो इस्लाम एंड साइंस के ऊपर किताबें लिख देते हैं, तो इस तरह से हर किताब जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ अच्छी किताबें भी मौजूद हैं, तो उनको जो है ना फिर अगर हम अपने मुताले में रखें तो उससे ईमान यानी नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस के ऊपर और कुरानी आयात के ऊपर जो है ना वो यकीन में तब्दील होता है इन बातों को सुन करके पढ़ करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दो किताबें इस तरह की, तो ठहराई हुई बात है, और इस तरह हरकत पैदा करने पर उसको कुदरत है, और बड़े इल्म वाला है कि इस रफ्तार की मसलहतें और हिकमतें जानता है, इसलिए इस खास तरह पर ठहरा दिया है। तो अब इन लोगों की कैलकुलेशन से पता चलता है कि वाकई अल्लाह ताला ने कैसे जो है ना वो सूरज चांद सितारों को और जमीन को कैसे एक खास रफ्तार के ऊपर ठहराया हुआ है, कि ठीक है ना, यानी इस अर्थ की जो पोजिशन है, खाली जितना डिस्टेंस है उसका सूरज से और जो चांद का अर्थ से डिस्टेंस है, ये लाइफ के लिए ऐसी हैं कि अगर ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएं तो जिंदगी सारी की सारी खत्म हो जाए, और वो ऐसे पोजीशन पर हैं कि बेहतरीन जिंदगी भी है और सीजंस भी आते जाते हैं और जो है वो आपके सिस्टम्स भी सारे के सारे चलते रहते हैं और अजीब अजीब तफसीलात, ठीक है, वो उनके सामने आई है। लोग लगे हुए, उनको लगे नहीं, हमें तो अपने मकसद की जिंदगी, मकसद जिंदगी के ऊपर लगना है, बंदगी के ऊपर। फिर उन्होंने क्या लिखा कि इवन आई यूज टू थिंक दैट व्हेन वी विल सी अ पर्सन विद वन आई एंड एवरीवन फॉलोइंग हिम, आई विल नेवर फॉलो हिम, लाइक इट वाज काइंड ऑफ सिंपल फॉर मी इन माय माइंड। बहुत सिंपल होगा दज्जाल का मामला, लेकिन फिर वो दज्जाल ही नहीं होगा जो इतना सिंपल होगा। ठीक है, काना होगा बोलते हैं। काना होगा भाई, एक आग का बोलते वो हदीस में है, वो काना होगा, लेकिन शुरू में भी काना होगा या आखिर में काना होगा। ठीक है, अच्छा, तमीमदारी रज़ियल्लाहु तआला वाली जो हदीस है, ठीक है, जिसमें उन्होंने दज्जाल से मुलाकात करी, राइट, है ना, और दज्जाल से सवाल जवाब हुए। अगर मैं, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे तो अभी बस जहन में बसी बात आई है, तो जिन्होंने, जिनको वो हदीस याद है तो वो बता सकते हैं कि उस हदीस में कहीं ये है कि उन्होंने उसको देखा, उसकी एक आंख थी, दूसरी आंख ही नहीं थी उसकी, है उसके अंदर नहीं है, ठीक है ना, माशाल्लाह इनको याद है, उसमें तो जिक्र ही नहीं है कोई। नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि दज्जाल काना काना होगा, तो तमीमदारी जो दज्जाल से मिलकर आए, नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तस्दीक करी, उन्होंने इतनी सारी बताई, बातें बताई नबी अलैहिस्सलाम को दज्जाल के बारे में, एक यही नहीं बताया कि उसकी एक आंख थी, दूसरी तो आंख ही नहीं थी उसकी। क्यों क्यों नहीं बताई भाई, क्यों नहीं बताई भाई, क्या ये एक अनहोनी चीज नहीं होती कि अगर वो बताते नहीं, यानी अगर उसकी वाकई एक आंख होती दूसरी आंख ना होती, तो वो अनहोनी चीज नहीं थी जो कि उनको तो पहले मेंशन करनी चाहिए, क्यों नहीं मेंशन करी उस वक्त, नहीं थी राइट, उस वक्त नहीं थी, ये बाद में होगी। जैसे कि वो हदीस जिसका जिक्र किसी क्लास में किया था कि जब वो खुदाई का दावा करेगा तब उसका जो है वो कान भी कट जाएंगे और उसकी जो है वो आंख भी जो है ना वो ऐसी हो जाएगी, उससे पहले नहीं होगी। हम जो समझ रहे हैं ना कि हाँ भाई मसला ही कोई नहीं, हम तो एक आंख वाले को देख करके पहले से समझ जाएंगे, और हम जो है वो, बल्कि हम तो समझते हैं, लगता है उसको पथराव करना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर मार मार के उसको, उसका बुरकस निकाल देंगे दज्जाल का, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, संजीदा मामला है ये, तमाशों वाला मामला नहीं है। चलो यहाँ पे हम क्लास रोक देते हैं, ठीक है, टाइम हमारा जो हो जाता है पहुंच चुका है उस टाइम टाइम पे, तो अगला बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।